نمدهو نصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين حضرات. یہ جو میں آج 8 منٹ لیٹ ہو گیا آنے میں، اس میں میرا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. کراچی اور حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے لاہور میں پانی بہت کھڑا ہے، تو اس کی وجہ سے لیٹ ہوا. جب گورنمنٹ چھوڑ کر یہاں ایک آٹوموبائل انڈسٹری تھی جس میں جاب میں نے کی، تو جس دن اس آرگنائزیشن کے چیئرمین مجھے انڈکٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہی کہ یہ جو آپ کا لاہور آفس کا سٹاف ہے، ذرا اس کا خیال رکھیے گا. اگر اسلام آباد میں آدھا گھنٹہ بارش ہو جائے تو یہ ٹیلی فون پہ انفارم مجھے یہ کرتے ہیں کہ لاہور میں گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہو گیا. تو صاحب، حیدرآباد اور کراچی میں تو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. خواتین حضرات، کی بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسانی آنکھ میں نہ کوئی بینائی ہے نہ کوئی اس کے اندر نور ہے، یہ کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں پاتی. توقتے کے جس رخ پر ہماری آنکھ دیکھ رہی ہو، جس اینگل سے یا جس آبجیکٹ کو ہماری آنکھ فوکس کی ہوئے ہے، اس آبجیکٹ پر روشنی نہ پڑے. جب کسی آبجیکٹ پر روشنی پڑتی ہے اور اسے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اس ریفلیکٹڈ لائٹ بیم سے ہماری آنکھ اس آبجیکٹ کو دیکھ پاتی. تو بینائی ہماری کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، وہ چیزوں کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے تا وقتے کے چیزوں پر روشنی، لائٹ یا نور نہ پھیلے. اسی طرح انسان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا تا وقتے کے وہ نور کو حاصل نہ کر لے، روشنی کو حاصل نہ کر لے. دنیا میں رب تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو طیب اور خبیث چیزیں پیدا کی ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کثیف اور لطیف چیزیں پیدا کی ہیں. ہماری ظاہری آنکھ کثیف چیزوں کو تو فوری طور پہ دیکھ لیتی ہے، اس لیے جب ہم کسی انسان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس کے جسم کو فوری طور پہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ اندر سے کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، وہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی. یہ اہل نظر ہیں، جب انسان ان سے ملتا ہے تو وہ اس انسان کی جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ کثافت یا لطافت کی کس منزل پر ہے. انسان ارتقاء کے منازل سے گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچا ہے. اس ارتقاء کی ایک کوئک جھلکی انسان کے قطرے سے پیدائش تک کا وقت، وہ اسی ارتقاء کی ایک کوئک جھلکی ہے. تمام پروسیس جس سے انسان آج تک گزرا ہے، اس کی ایک جھلکی وہ 37 ویکس میں دیکھ سکتا ہے انسان. انسان کے اندر حیوان موجود ہے، یہ بات شاید باعث بن جائے بہت سی آئی بروز ریز ہونے کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان، بقول مولانا روم کے، انسان ایک گھنا جنگل ہے جس میں हैवानात और नबातात सभी मौजूद हैं। इसीलिए किसी इंसान को आप शेर की तरह बहादुर देखेंगे। कुछ साहिबान हमें लोमड़ी की तरह चालाक दिखाई देंगे, कुछ इंसान हमें भेड़ की खाल पहने हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब हम किसी के बारे में राय का इजहार करते हैं तो हम उसकी किसी एक सिफ्त को नहीं कभी देखते, उसकी एक चीज को नहीं देखते, या देखना नहीं चाहिए हमें। और हमें चाहिए ये है कि इंसान की तमाम चीजों को, उसकी तमाम सिफात को, उसकी तमाम बुराइयों को इकट्ठा करके, यकजा करके उसकी एक ओवरऑल असेसमेंट हम करें, और जो चीज उसकी ज्यादा हेवियर हो तो हम उस खूबी से उसे याद करें। तो बात हो रही थी निगाह की। इंसानी आंख कसीफ चीजों को देखती है। जब कभी आंधी चले या तेज हवा चले तो गौर कीजिए कि हम उस हवा में उड़ने वाली मिट्टी को तो देख पा रहे हैं लेकिन हवा को नहीं देख पा रहे हैं। ये कमाल की चीज है कि जिस चीज ने उस मिट्टी को उड़ाया है हम उस प्राइम मूवर को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन मिट्टी को देख पा रहे हैं, हालांकि मिट्टी बजाते खुद उड़ नहीं सकती। तो ये जिस्म हमारा अज खुद चलने फिरने पर कादिर नहीं है, इसका प्राइम मूवर जो इसे चलाए हुए है वो रूह है इंसान की। लेकिन उस रूह ही को हम नहीं देख पाते। जिस्म का ताल्लुक इस मिट्टी से है और वो मिट्टी ही में चला जाता है। रूह का ताल्लुक चूंकि रब से है कि वो अमरे रब्बी है, तो रूह मरती नहीं, अपने असल की तरफ लौट जाती है। इसलिए कुरान में ये फरमाया कि हर चीज को अपने असल की तरफ लौट जाना है, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। तो जिस चीज का ताल्लुक रब से है वो रब से ही आई है और रब की तरफ लौट जाएगी, तो उसकी असल पाकीज़ा है। ये और बात है कि हम अपने अमाल से उसे कसीब कर लें या हम अपने अमाल से उसको लताफत के आला मदारिज तक ले जाएं। ये जो रूह की मैं बात कर रहा हूं कि ये रब से इसके ताल्लुक है और रबी की तरफ लौट जाती है, गालबन लास्ट मंडे किसी साहब ने फना एक सवाल पूछा हुआ था तो मैं उनसे अर्ज कर रहा था कि दो तरह की फना है। खासे लंबे उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पेश की थी, गलत या सही इससे मैं नहीं कह रहा, हो सकता कतई तौर पर गलत हो, लेकिन उस फना को हम एक सेंटेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं। उस दिन मैंने जानबूझ के वो नहीं अर्ज की थी बात कि उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर इसको मैं समाप्त कर दूंगा एक सेंटेंस में। जब हम हर तरह के गैर अल्लाह को भुला देते हैं और सिर्फ रब याद रह जाता है तो वो फना है, फना फी अल्लाह जिसको हम कहते हैं। तो हर चीज, हर मास्वा भुला देने का नाम फना है और उसी को रूहानियत में फना फी अल्लाह कहा जाता है। ये जो हम रूहानियत के की जुस्तजू में रहते हैं कि हमें रूहानियत हासिल हो जाए, यह हासिल नहीं हो पाती कभी। इसको हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इंसान के बातिन का ताल्लुक रब से जुड़ जाए। इसलिए एक अर्ज किया करता हूं कि इबादत से रब नहीं मिलता, इबादत से पारसाई मिलती है, नेकी से रब मिलता है। जब हम इबादत करते हैं तो इबादत करते करते रफ्ता रफ्ता वह हमारी आदत बन जाता है। अगर किसी पाबंद नमाजी ने नमाज अदा न की तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है, वैसी ही बेचैनी जैसे एक सिगरेट पीने वाले को सिगरेट न मिले तो वो बेचैन होता है। वो इबादत की आदत है जो इंसान को बेचैन कर रही होती है। ये जो इबादत हम करते हैं आदत से, आदतन इबादत जो की जाती है, रब नहीं मिलता। रब मिलेगा जब हम अपनी रूह का ताल्लुक रब से कायम कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह कि अगर पानी का एक बहुत बड़ा तालाब हो, पौंड हो, झील हो, अगर उस पौंड का या उस झील का ताल्लुक किसी नहर दरिया से न हो तो वो जो पानी वहां उस पौंड में है कुछ अरसे के बाद स्टेल हो जाएगा, उसका रंग भी बदलेगा और उसमें बैड स्मेल भी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर उसी तालाब का ताल्लुक दरिया से होगा, नहर से होगा, तो ताजा पानी उसके अंदर दाखिल होता रहेगा, वो पानी कभी स्टेल नहीं होगा। उसमें पानी की मखलूक भी जिंदा रह पाएगी, खड़े हुए पानी में पानी की मखलूक भी जिंदा नहीं रहती। तो इसी तरह जब इंसान की रूह का ताल्लुक रब के साथ नहीं होता तो इंसान की रूह कसीफ होने लगती है और उस कसाफत की वजह से वो मरई चीजों को तो देख पाता है, इंसान गैर मरई चीजों तक उसकी रसाई नहीं होती। और रूह का ताल्लुक इंसान रब के साथ सिर्फ उसी सूरत में जोड़ पाएगा जब इंसान अपने से ज्यादा साहले लोगों में बैठेगा, क्योंकि साहले की सोबत से इंसान की रूह में लताफत पैदा होगी। ये लफ्ज मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं, ये रूहानी टर्म है, रूहानियत की तसव्वुफ की टर्म है, क्योंकि रूह को लतीफ किए बगैर इंसान की परवाज ऐसी नहीं होती को कारखाने कुदरत के इजाबात को देख सके। तो इसलिए इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है रूहानियत में। और लताफत पैदा करने का आसान तरीन तरीका यह है कि इंसान दो चीजों को यकजा कर दे, हकूकुल्लाह की अदायगी और मुस्बत सोच, जिसको आसान लफ्जों में मैं ये अर्ज किया करता हूं कि आप खल्के खुदा पर मेहरबान हो जाइए, रब आप पर मेहरबान हो जाए। तो वो मुस्बत सोच जब आती है तो उस मुस्बत सोच के नतीजे में इंसान यहां तक चला जाता है कि जहां किसी ने उसके साथ ज्यादती की, किसी ने गुनाह किया, किसी ने जुर्म किया, तो इंसान की मुस्बत सोच उसको इस सोच की तरफ ले जाएगी जहां वो कहता है कि बेचारे से गलती हो गई। वो कभी नहीं कहता कि इसने गुनाह किया, इसने जुर्म किया या इसने ज्यादती की मेरे साथ। तो वो उसको हमदर्दी के लहजे में ये कहता है कि बेचारे से गलती हो गई। तो जब हम दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि बेचारे से गलती हो गई तो हम उसको फिलफौर माफ कर देते हैं, उसकी उस कोताही से आंख बंद कर लेते हैं। और नतीजा ये है कि ना तो किसी से हमें कोई गिला होता है कभी, ना किसी से कोई शिकवा होता है। نہ کسی کے خلاف دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، نہ کبھی کینہ قریب آتا ہے، بلکہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس سوچ سے. جب ہم کسی کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں مادی لحاظ سے، تو پھر ہم اس کو گرج نہیں کرتے، بلکہ دل سے بے ساختہ پھر مثبت سوچ کا حامل ہے انسان، تو بے ساختہ یہ آواز اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید رزق عطا فرمائے، رب تعالیٰ اسے مزید خوشحالی عطا فرمائے. تو جب یہ جذبات ہوتے ہیں تو ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے کہ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے لوٹ مار کی ہے، حسد کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. تو وہ جو ایک کسی ایک نشست میں یہاں میں نے دل کی 10 آلائشوں کا ذکر کیا تھا، ان 10 آلائشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. جناب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے جو فرمایا تھا کہ اگر روحانیت کی طرف سفر، ان کے الفاظ یہ نہیں ہیں، میں آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ روحانیت حاصل نہیں ہو پائے گی انسان کو جب تک کہ اپنے دل کو ان 10 آلائشوں سے پاک نہ کر لے. تو انسان کا دل مثبت سوچ کی وجہ سے ان آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی بڑی صراحت کے ساتھ کرے انسان، لیکن عادت نہ بننے دے، اسے شوق سے کرے، اس جذبے سے کرے کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنا ہے. تو اس جذبے سے عبادت کر لے اور اپنی سوچ کو مثبت کر لے. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی شخص میں، تو پھر اس کی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے راستے پر وہ چل نکلتا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی شارٹ کٹ اور اس سے زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ روحانیت کے حصول کا آسان طریقہ ہے. یہ سوال کسی صاحب نے پھر ریپیٹ کیا ہے، شرپور شریف کے جناب حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں بتائیے، ان کے مقام کے بارے میں بتائیے، کیا ان کا حکم آج بھی جاری و ساری ہے؟ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضور، اگر آپ مجھ سے کسی سرجن کے بارے میں پوچھیں گے، کسی پروفیسر کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کیسا ہے، ان پر کامنٹ کرنے کے لیے مجھے ان سے بڑا سرجن یا ان سے بڑا پروفیسر ہونا ہوگا. ان سے زیادہ قابلیت پیدا کیے بغیر میں ان پر کامنٹ نہیں کر پاؤں گا، نہ مجھے کرنے چاہیے. تو جناب حضرت میاں شیر محمد صاحب بہت عظیم آدمی ہیں. میں نے تو بھائی علم کی عظمت کی ابھی ہوا بھی نہیں کبھی چکھی. یہ تو کوئی ایسا صاحب علم جو بہت بلند مقام پر فائز ہو، وہی آپ کو بتا پائے گا کہ جناب حضرت پیرانے پیر غوث العظم دستگیر صاحب کس مقام پر تھے، جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کس مقام پر ہیں، یا حضرت شیر محمد صاحب، یا اسی طرح اور بزرگان دین کس مقام پر ہیں. آپ ایک چپراسی سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ چپراسی کیا، اس دفتر کے سامنے سے گزرنے والے ایک راہگیر سے جس کی منزل شاید کوئی اور ہے، کہ اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا شخص کیسا ہے، میں کیا عرض کر پاؤں گا. ویسے کتابوں میں پڑھی ہوئی ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جس شخص کو اللہ نے کوئی روحانی مقام عطا فرمایا ہے، وہ کسی دوسرے کے بارے میں کبھی کامنٹ نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے، جو یہ کہتا ہے کہ میں قطب عالم ہوں اور وہ فلاں तो फला हैं, उस मकान पर फाइज हैं, तो फिलफौर समझ जाइए कि इसके पास कुछ नहीं है। इन्हीं साहब का दूसरा सवाल है कि क्या अमल या मेहनत जरूरी है किसी भी कामयाबी के लिए। रब ताला तो कभी बगैर मेहनत और अमल के भी अता फरमा देता है। सऊदी अरब में तो घर से ऑयल निकल आता है, तो इन लोगों को मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे नजदीक रब का फरमान आंखों के सामने हर वक्त रहता है कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो रब का फरमान मेरे नजदीक बिल्कुल सच्चा है, रोजे अव्वल से लेकर रोजे कयामत तक के लिए वैलिड है। ये जो कभी कभार रब ताला किसी को बगैर मेहनत के अता कर देता है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। और याद रखिएगा कि एक्सेप्शंस को हम कभी एग्जांपल्स के तौर पे कोट नहीं कर सकते। और जो आपने सऊदी अरब में के लोगों की मिसाल दी है, तो मैं ये अर्ज कर दूं कि आपकी नजर सिर्फ उनकी आज की हालत पर है, जरा उनके माजी को देख लीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, दूध जब तक दूध होता है तो बड़ा वल्नरेबल होता है वो, कि उसमें कोई पानी डाल दे तो दूध की जो खालस होने की सिफ्त है वो मुतासिर हो जाएगी। इसी दूध को जब आप बॉयल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कई घंटे उसको धीमी आंच पर पकाते हैं, और उसके बाद उस दूध को बुलोते हैं आप, उसकी बीटिंग होती है, अंग्रेजी में वो बुलोने को बीटिंग ही कहेंगे, तो बीटिंग होने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। वो मक्खन वल्नरेबल नहीं होता किसी चीज को। जो पानी उसकी असल दूध उसकी खालिसपन को खत्म कर देता है, मक्खन उसी पानी में तरोताजा रहता है। लेकिन वो दूध से मक्खन तक का जो सफर उसने तय किया है, उसमें वो आग पर कई घंटे पड़ा रहा है धीमी आंच पर, हत्ता के उसका रंग भी बदल गया है, इतनी आग उसने बर्दाश्त की है आंच। और उसके बाद उसने फिर बीटिंग ली है उसने, और वो भी घंटा भर की बीटिंग है, फिर कहीं जाके उसमें से मक्खन निकला है। और वो मक्खन खुश जायका भी है, खुश शक्ल भी है, और वल्नरेबल भी नहीं है कसाफतों के लिए। तो सऊदीज के उस सफर को देखिए जो 1400 साल का उन्होंने किया है। रेगिस्तान में जिस तरह से मार खाई है, उससे पहले उन्होंने दुनिया की दो अपने वक्त की सुपर पावर्स को जेर किया है, जो कुर्बानियां दी हैं। और उससे पहले उनके जद्द अमजद जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो आपने दुआ फरमाई कि मेरी कौम को दुनिया की हर नेमत अता कर दे, ये सब चीजों के नतीजे में वो उनके घरों से तेल निकला है और वो आज आराम से बैठे हैं। तो चलिए, मैं और आप 1400 साल की वो मेहनत और वो मार तो नहीं खाते, सिर्फ हम 40 साल की मार खा लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घर से भी तेल निकल आएगा। एक और सवाल है कि एक शख्स की शादी हुई और अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, इस शख्स का अबू धाबी का वीजा लगा हुआ है, उसकी परदेश जाने की सबसे बड़ी वजह और मकसद उसका अपना घर बनाना है, किराए के घर से छुटकारा हासिल करना है, उसके माँ बाप हयात हैं, क्या ये मकसद लेकर बीवी बेटी को छोड़कर परदेश जा सकता है, वो क्या वजीफा करे कि उसका मकसद जल्द अज जल्द पूरा हो जाए। हिजरत में बड़ी बरकत है, जब किसी एक जगह इंसान पर रिस्क तंग हो जाए तो हिजरत कर ले, रिस्क खुल जाता है। और वजीफा जो पूछा साहब, मैं तो एक ही वजीफे से वाकिफ हूं और उस वजीफे के हमेशा नताइज बड़े अच्छे निकले हैं, और वो वजीफा है मेहनत। मेहनत कर ले और उसके बाद अल्लाह से दुआ करे कामयाबी की, उसके नताइज बड़े अच्छे निकलते हैं और अल्लाह भी सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है जो मुजाहिदों की तरह हर वक्त मेहनत अमल और जद्दोजहद के लिए कमर कस के रखते हैं। रब को काहिल लोग पसंद नहीं। मराकबा, इंसान ने मराकबे के बारे में पूछा है कि मराकबे के बारे में बता दें, ये किस तरह करते हैं, तरीका और मराकबा करने के फायदे भी बता दीजिए। बहुत मरतबा इस बात हो गई, मैं यही अर्ज किया करता हूं कि एक ही सवाल बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता। इहतजाज करते हैं लोग कि वक्त आप हमारा जाया करते हैं, इन्हीं लफ्जों में कहते हैं मुझे कि आप हमारा वक्त जाया करते हैं। तो एक ही सवाल बार बार रिपीट होता रहता है, तो उसके बजाय आप दूसरा सवाल एंटरटेन कर लिया करें। तो मराकबे पर बहुत सी नशिस्तों में यहां बात हो चुकी, आप किसी एक नशिस्त की गुफ्तगू को देख लीजिए, सीडीज अवेलेबल हैं, उसमें मराकबे के आपको फवायद भी मिल जाएंगे, तरीका भी मिल जाएगा अल्लाह ताला। इसके बजाय मेरे ख्याल में ज्यादा फायदा हो जाए हमें अगर हम एमाल पर ज्यादा जोर दे दें। कमाल यह है कि हम उन चीजों के बारे में ज्यादा परेशान हैं जिनकी बुनियाद पर हमारे फैसले नहीं होने हैं रोजे महशर। रोजे महशर रब ताला यकीनी तौर पर यह हमसे नहीं पूछेगा कि तुमने मराकबा किया है या नहीं किया, तुमने असबात और नफी की जर्ब लगाई कि नहीं लगाई, तुम्हारा कल्ब जारी हुआ या नहीं हुआ। वो रहीम और करीम है, उसकी रहमत से यही उम्मीद है कि वो अपने हकूक माफ फरमा देगा। लेकिन हमारे दूसरे अमाल जो हैं उन पर फैसला होगा। तो पहले हम आखरत के फैसले की फिक्र हम कर लें, अगर ज्यादा अकलमंदी यही है, तो हम उन अमाल पर जोर दे दें जिन अमाल पर हमारी आखरत का फैसला होना है। एक और सवाल है कि दुरूद पाक पढ़ते हुए हम अल्लाह ताला से इल्तजा करते हैं, अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। वजाहत करें कि सल्ले अला कितनी बड़ी नेमत है, क्या पूरी कायनात का निजाम इसकी वजह से चल रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जानता हूं, मैंने अर्ज किया कि मैं कोई साहिब इल्म तो हूं नहीं जो मैं ऐसी बारीक बातों को जान सकूं, मैं तो मोटी सी एक बात जानता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, और ये बात नक्श है मेरे जहन पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी अपने हक में दुआओं और मेरे दुरूद की कतई तौर पर कोई हाजत नहीं है, वो इन चीजों से बालातर हैं, बुलंद हैं इनसे। दुरूद शरीफ तो मैं इसलिए पढ़ता हूं कि मैं एहसानमंद हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमाए हक हम तक पहुंचाया, न सिर्फ कलमाए हक पैगाम हक हम तक पहुंचाया बल्कि अपनी जाती जिंदगी में तकलीफें उठा के उसको अपनी जात पर इम्प्लीमेंट करके मेरे लिए एक अमली नमूना छोड़ दिया। यह बहुत बड़ा एहसान है हम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उस एहसान के जवाब में इजहार तशक्कुर के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। मेरा इल्म तो यहां आके खत्म हो जाता है। सल्ले आला क्या कायनात को निजाम को चला रहा है, सब ये मेरे इल्म में नहीं है। बस मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए इतना काफी है कि کہ ہم دل میں احسان مند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس احسان کے اظہار کے لیے کہ ہم احسان مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اظہار تشکر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجیں۔ ایک اور سوال کیا، عالم مثال کے اثرات عالم اسباب پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، جبکہ عالم اسباب کے اثرات عالم برزخ پر مرتب ہونے کی سمجھ آتی ہے، اس کی مہربانی سے وضاحت کر دیں۔ بھائی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی پر بات کر رہا تھا ساری، اور بڑی وضاحت سے میں نے بات کی کہ روح من جانب اللہ ہے اور اسے لوٹ کے واپس چلے جانا ہے۔ جب روح ہماری لطیف ہوتی ہے تو اس کے اثرات دنیا میں اس طرح ہم پر مرتب ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو میں یوں کر دوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے آپ کے لیے، کہ ہمارے جو جسم مثالی ہے، جو عالم مثال میں ہے، جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارے ذکر اذکار ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، اس کے اثرات کے تحت ہمارا جو جسم مثالی ہے یا وہ ناتواں ہوتا ہے یا توانا ہوتا ہے۔ جو کچھ یہاں ہم کر رہے ہیں اس کا اثر عالم مثال میں جو ہمارا جسم مثالی ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جو جو ہمارا جسم مثالی کمزور ہوتا ہے تو عالم اسباب میں ہمارا جسم کثیف ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں کثافت بڑھتی چلی جاتی ہے، گناہوں میں ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور ہماری باطنی آنکھ اتنی ہی دھندلاتی چلی جاتی ہے، اور جتنا ہمارا جسم مثالی لطیف ہوتا ہے اس کا براہ راست تعلق ہمارے روح سے ہے، تو ہماری پرواز اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہماری باطنی آنکھ کی بینائی اتنی ہی تیز ہوتی چلی جاتی ہے، ہماری نگاہ بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح عالم اسباب کے جو اثرات ہیں وہ خود ہی انہوں نے لکھ دیا کہ عالم برزخ میں مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال جو ہیں یہاں وہ اصل میں فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے آخرت میں فیصلہ ہمارے اعمال پر ہوگا۔ ہمارے اعمال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عالم مثال میں جو جسم مثالی موجود ہے اس کی صحت کیسی ہوگی۔ تو اگر ہمیں روح کو زیادہ بہتر کرنا ہے کہ دور تک پرواز کر سکے، اپنے جسم مثالی کو ہم نے توانا کرنا ہے، تو یہاں ہمیں اپنی سوچ پہلے مثبت کرنا پڑے گی اور اعمال اس کے نتیجے میں خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اعمال کا تعلق ہماری سوچ سے براہ راست ہے۔ کوئی بھی عمل وجود میں آنے سے پہلے سوچ میں انسان کے آتا ہے، سب سے پہلے انسان اس کام کے بارے میں سوچتا ہے، پھر نیت کرتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے، ارادہ باندھتا ہے اور عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں، یہ چار سٹیپس ہیں جس کے نتیجے میں کوئی بھی عمل وجود میں آتا ہے۔ جب ہماری سوچ ہی پازیٹو ہو جائے تو اعمال خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اور اعمال خود جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمارا جسم مثالی پلنے لگتا ہے، توانا ہونے لگتا ہے، روح ہماری اس کی پرواز بڑھنے لگتی ہے۔ تو انعامات کی بارش عالم الاسباب میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی ہم پر۔ دوسرا انہیں صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض بچے پیدائشی معصوم اور بے ضرر ہوتے ہیں یا نارمل کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض بچے بہت ضدی سرکش بچپن ہی سے ہوتے ہیں، یہ ان کے جینز کا اثر ہے یا ماحول یا ماں باپ کی غلط حرکت؟ یہی کسی نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بچہ، یا قرآن کے لفظوں میں اگر بات کریں، ہر روح رب تعالیٰ نے ایک سفید کاغذ کی طرح پیدا کی ہے، ایک سفید کاغذ یہ جس پر کچھ نہیں لکھا، वो रब ताला ने हमारे हाथ में बच्चे की सूरत में अता किया है। ये हम पर मुनहसर है, इसका इन्हसार हमारी समझ और अकल और अमाल पर है कि हम इस सफेद कोरे कागज पर क्या तहरीर करते हैं, कुरानी आयात या नाजेबा अल्फाज। कोई रूह या कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पर ना तो जिद्दी होता है, ना सरकश, ना गुसीला। ये उसे पहला सांस लेने से लेकर उसकी मौत तक इर्द गिर्द के लोग और इर्द गिर्द का माहौल उसे ये सब बनाता है। इसमें बहुत तफसीली गुफ्तगू शायद 2-3 नशिस्तों में हुई थी, वो आप सुन लीजिए, बहुत तफसील से मिल जाएगी इसमें। अब आखिर पर वो है कि दुआ बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए। तो भाई, मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका कि ये अमलियात और वज़ाइफ में मैं यकीन नहीं रखता। हाँ, वज़ाइफ और तस्बीहात में पूरी तरह यकीन है, लेकिन उनकी वो फॉर्म डिफरेंट है। अगर कोई तस्बीह या वजीफा बतौर जिक्र इलाही किया जाए, नियत अगर ये है कि मैं ये तस्बीह पढ़ रहा हूं या ये वजीफा कर रहा हूं ताकि मैं अपने रब को पुकारूं और उसके जवाब में रब मुझे पुकारे, तो उसका मैं कायल हूं, वो जरूर की जानी चाहिए। लेकिन नियत सिर्फ अपने रब को पुकारने की हो, नियत ये नहीं हो कि ये मैं वजीफा पढ़ लूं ताकि मेरा बच्चा नेक हो जाए, उस वजीफे में मैं यकीन नहीं रखता। तो इसलिए जिस चीज पर यकीन नहीं मेरा, तो मैं जानूंगा मैं नहीं उन चीजों को, और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, वरना मैं जरूर आपके खिदमत में पेश कर देता कोई ना कोई वजीफा। एक और सवाल इन्हीं साहब ने किया हुआ है कि अल्लाह पाक के साथ मान, नाज और नियाज कौन सा राबता, कौन सा लफ्ज सही है। भाई, मेरे नजदीक तो मान ज्यादा अच्छा है। अगर रब पर ये मान है कि वो मेरा रब है, वो ऑल टाइम्स पावरफुल है, वो सबसे बड़ा है, वो कादिर है, ये मान है, मेरे रब से बड़ा कोई नहीं, मेरे रब से ज्यादा कादिर कोई नहीं, तो ये मान ज्यादा बेहतर है। इनका इसी सवाल का अगला हिस्सा है कि कौन सा राबता, कौन सा लफ्ज सही है, कौन सा गलत, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। भाई, इश्क हकीकी, वैसे ये सवालात देख के मुझे एक चीज का ख्याल आया कि मैं अगर जियो पर इफ्तारी के प्रोग्राम में जाऊं तो बहुत से इनामात लूट लाऊंगा वहां से। तो ये हजूर आपने मुझे क्विज के इम्तिहान में डाला है। फिर कुछ सवालात बाकी रह गए इंशाल्लाह ताला, बशर्ते जिंदगी अगर नेक्स्ट संडे ईद की छुट्टियां ना हुई तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है, उसमें जवाब पेश करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।